આપણા મલાડના જે ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હતા તે નગીનદાસ હિંમતલાલ ડગલી, એમના ભાઈ ભોગીભાઈ ડગલી, કે જેઓ છેલ્લા ગુરુદેવશ્રીની હાજરીમાં 8 વર્ષ સુધી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સાથે રહ્યા હતા અને છેલ્લા લગભગ ઘણા વર્ષોથી સોનગઢમાં રહી અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી અને પૂજ્ય બેનશ્રીનો તત્વનો લાભ લીધો હતો. લગભગ 7-8 વર્ષ પહેલાં એમને કેન્સર ડિટેક્શન થયું હતું અને છતાં પણ તેઓએ સુવર્ણપુરીનો ત્યાં રહી અને ખૂબ જ આત્મસાધના કરી હતી અને આપણા પાલા મંદિર સહિત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને ના માન્યતા પ્રાપ્ત જેટલા જેટલા જૈન મંદિરો છે તેમાં વઢવાણ સહિત દરેક જૈન મંદિરોમાં પ્રતિષ્ઠામાં તેઓ અને જે થોડા સમય પહેલાં જેઓ દેહ પરિવર્તન થયું હતું એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ, એ બંનેની જોડી હતી. તેઓ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યક્રમમાં એવો શાંતિ જાપનો લાભ લેતા હતા અને દરેક કાર્યક્રમની અંદર આપણા બ્રહ્મચારી વજુભાઈ સાહેબ, બ્રહ્મચારી ચંદુભાઈ સાહેબ વગેરે સાથે રહી અને ખૂબ જ ઉપયોગી થતા હતા એવા શ્રી ભોગીભાઈનું ગઈકાલે દેહ પરિવર્તન. એટલે આમ તો આજ સવારે 3:10 થયું છે. આપણે એવી ભાવના ભાવીએ કે જેઓ ઘણા વર્ષોથી સોનગઢ રહી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી અને પૂજ્ય બેનશ્રીએ ફરમાવેલા માર્ગ ઉપર આગળ વધી શીઘ્ર રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરી, મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરી એવી મંગલમય ભાવના સાથે આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. જય જીનેન્દ્ર.
નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવિસાહુણમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમો ગણી, મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ, સર્વ કલ્યાણકારિકમ, પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ, જૈનમ જયતુ શાસનમ, જૈનમ જયતુ શાસનમ. નમઃ સમય સારાય, સ્વાનુભૂત્યા ચકાસિતિ, ચિત્સ્વભાવાય ભાવાય, સર્વભાવાંતરચ્છિદે. વંદે ત્વ સર્વ સિદ્ધે, ધૂમચલમણો વયમ ગદિમ પત્તે, ઓચ્છામિ સમય પાહુડ, મિણમોષુદ કેવલી ભણિદમ.
समयसार जी परमागम की अपनी 320 नंबर की गाथा चल रही है और अभी हमने आत्मार्थी भाई भोगी भाई के देह परिवर्तन के समाचार मिले. अभी मैं जब हिम्मतनगर के बाद सोनगढ़ था 5-6 दिन, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन के बाद जयकारा बुलाते थे, शायद वही है ना ये. हाँ, तो वो जब जयकारा, उनकी आवाज़ जयकारा की आती तो मैं एक दो बार तो मैं समझ ही नहीं पाया. मैं ढूंढा, मैंने कहा भोगी भाई है किधर. तो फिर मेरे को बताया वहाँ पे कि वे अभी मुंबई में हैं और उनका ऐसा, उनको देह माने की परिस्थिति प्रतिकूल बनी है. तीनों टाइम गुरुदेव श्री के प्रवचनों के बाद का जयकारा लगाते थे और जब भी मिलते थे सोनगढ़ में बड़ी आत्मीयता से मिलते थे, बहुत वात्सल्य भाव से वो मिलते थे. सच में देखो, गुरुदेव के शासन काल में गुरुदेव की धर्म प्रभावना काल में और उसके बाद भी ऐसे अनेक आत्मार्थी धीरे धीरे हमारे बीच में से विदा लेते जा रहे हैं और अपने को एक प्रेरणा देके जा रहे हैं कि गुरुदेव का जो ये योग मिला है, दुर्लभ योग अपने को मिला है, इस दुर्लभ योग को उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने को सफल कर लेना जैसा है ना। क्योंकि गुरुदेव अगर भावी तीर्थंकर द्रव्य है तो हम भी ऐसे भावी तीर्थंकर द्रव्य के शिष्य होने के कारण अनंत संसारी तो कभी भी नहीं हो सकते, ये समझ लेना, है ना। तो अपने को तो अपन बोलते हैं ना, जिसमें गुरुदेव श्री की स्तुति में ये बात बोलते हैं, आ दास ना जीवन शिल्पी तने नमो हूँ। तो अगर हमारा जीवन उस तत्व ज्ञान से ओतप्रोत नहीं होगा तो ये जीवन गुरुदेव ने घड़ा है ऐसा हम कहने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि जो जीवन गुरुदेव के द्वारा घड़ा गया हो और हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन के घड़ने वाले, हमारे जीवन का निर्माण करने वाले गुरुदेव श्री हैं, तो वो जीवन तत्व ज्ञान के रंग में रंगा हुआ होना चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? भव की थकान वाला जीवन होना चाहिए लेकिन भव में उत्साह वाला जीवन नहीं होना चाहिए। और अति शीघ्र, क्योंकि गुरुदेव ने भव और भव के अभाव की चर्चा की है, अनेक साधर भी हमारे बीच में से गए लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत से उनमें से गहरे संस्कार लेकर के यहाँ से गए हैं और दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। वैसे भी मैं तो ये बात कहने के लिए बिल्कुल दृढ़ता से ये बात कहता हूँ कि पंचम काल में जिसने गुरुदेव श्री का शिष्यत्व अंगीकार किया उसका अनंत संसार है ही नहीं, ये समझ लेना। अनंत संसार अगर हमारा बाकी होता तो हमारी गुरुदेव श्री के द्वारा उद्घाटित इस तत्व ज्ञान के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं होती। समझ आ गया ना? क्योंकि छठे छठाए हैं अपन लोग, दिगंबर, पूरी जैन समाज में दिगंबर, दिगंबरों में तेरा पंथी और तेरा पंथियों में भी मुमुक्षु, है ना। और हमेशा मोक्षगामी जीव थोड़े ही होते हैं, इसलिए अपने को हतोत्साहित होने की भी रंचमात्र आवश्यकता नहीं है, बराबर है। तो ये भोगी भाई के प्रति बहुत श्रद्धांजलि उनके प्रति, और अपनी चर्चा को अब अपन आगे बढ़ाते हैं। ये पानों नंबर जो मेरा जो किताब में चल रहा है ना, ये पेरा यहाँ से लो आप। तो इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ, ये यहाँ तक चर्चा हो गई थी, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है। ये आया था ना कि अगर वो सर्वथा पारिणामिक भाव से पर्याय अभिन्न हो तो मोक्ष का प्रसंग आने पर इस भावना रूप मोक्ष कारणभूत पर्याय का विनाश होने से शुद्ध पारिणामिक भाव भी विनाश को प्राप्त हो, परंतु ऐसा तो होता नहीं क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है। यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। अब देखो, इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव का अवलंबन लेने वाली जो भावना, भावना ये पर्याय है, शुद्ध पारिणामिक भाव उस शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना का विषय है। मैंने वो भावना किसको विषय करती है कि शुद्ध पारिणामिक भाव को विषय करती है। तो उस रूप जो अब वो जो शुद्ध पारिणामिक भाव का विषय करने वाली जो भावना है ना, कि जिसको अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख परिणाम और शुद्धोपयोग कहा था, और उसे ही आगम भाषा में औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव एक इस नाम से कहा गया था। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध पारिणामिक भाव का अवलंबन लेने वाली जो भावना, उस रूप जो औपशमिक आदि तीन भाव
वे समस्त रागादि से रहित होने के कारण। देखो गजब की बात क्या ली है, सुनना जरा ध्यान से। औपशमिक आदि तीन भाव जिन्होंने परम पारनामिक भाव का अवलंबन लिया, और अवलंबन लेकर के जो औपशमिक आदि जिसको शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग और आगम भाषा में औपशमिक आदि, औपशमिक छायिक और क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है, कि वे समस्त रागादि से रहित होने के कारण। क्या मतलब? कि औपशमिक भाव है ना, तो वो औपश है तो अभी भले अभी चौथा गुणस्थान, लेकिन चौथे गुणस्थान में भी जो औपशमिक भाव है, कि वो औपशमिक भाव समस्त रागादि से रहित है। सुनना ध्यान से, क्योंकि रागादि है ना, राग द्वेष मोह, कहते ये तो औदयिक भाव है। औपशमिक भाव में जिस तरह केवल ज्ञानी परमात्मा के छायिक भाव की पूर्णता प्रकट हो गई, और जिस तरह उनके छायिक भाव में किसी प्रकार के रागादि औदयिक भाव नहीं है, इसी तरह भले ही अभी चौथे गुणस्थान में किसी को औपशमिक भाव प्रकट हुआ, क्षयोपशम भाव प्रकट हुआ, और किसी किसी को छायिक भाव भी श्रद्धा संबंधी प्रकट हो गया, श्रद्धा का ही छायिक भाव प्रकट होगा चौथे में, तो वो कहते हैं कि ये तीनों भाव भी समस्त रागादि से रहित है। क्यों रागादि से रहित है? क्योंकि रागादि का अंतर्भाव तो औदयिक भाव में होता है, ये औदयिक भाव नहीं है, ये औपशमिक भाव है, क्षयोपशम भाव है और छायिक भाव है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तीनों परम पारनामिक भाव की भावना रूप भाव है। भावना माने हम तो भावना भाते हैं, हम आपकी सदगति हो, हम तो भावना भाते हैं आपका अभ्युदय हो, हम तो भावना भाते हैं आपका कल्याण हो, ये विकल्पात्मक भावना को भावना नहीं कह रहे यहां पे। उस शुद्धात्म स्वरूप में जो निर्विकल्प परिणति हो गई उसको कह रहे यहां पे भावना, और वो भावना औदयिक आदि मतलब औदयिक मतलब मोह राग द्वेष आदि भावों से रहित है, सर्वथा रहित है। औपशमिक क्षयोपशमिक और छायिक भाव, क्यों? क्योंकि भले ही उसमें शुद्धि की अपूर्णता है, लेकिन शुद्धि की अपूर्णता होने पर भी औपशमिक भाव औदयिक भाव रूप नहीं है, क्षयोपशम भाव औदयिक भाव रूप नहीं है, छायिक भाव औदयिक भाव रूप नहीं है, और रागादि भाव है वह उदय भाव रूप है। इसलिए उनसे वह सर्वथा रहित होने के कारण, औपशमिक आदि तीन भाव समस्त रागादि से रहित होने के कारण शुद्ध उपादान कारणभूत होने से। ये पर्याय शुद्ध उपादान कारण, दो शब्द आए थे उपादान भूत और उपादान कारणभूत, ये अंतर क्यों किया आचार्य ने? उपादान भूत कहकर के त्रिकाली को बताया कि जैसे त्रिकाली द्रव्य कारण नहीं है, उपादान भूत त्रिकाली द्रव्य रागादि का कारण नहीं है, इसी तरह उपादान कारणभूत ये पर्याय भी रागादि का कारण नहीं है। एक बात और ये कैसा है कि शुद्ध उपादान कारणभूत होने से यानी ये पर्याय की क्षणिक योग्यता रूप कारण है, ये पर्यायगत उपादान है, ये क्षणिक उपादान है, लेकिन कैसा उपादान क्षणिक भी? शुद्ध उपादान। रागादि भाव को क्या बोलते हैं? अशुद्ध उपादान। ठीक है, तो ये कहते हैं शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष कारण अर्थात मोक्ष के कारण है। यानी क्या मतलब? कि मोक्ष है ना, मोक्ष सुनना जरा, कि मोक्ष है वो भी पर्याय है ना, और वो भी शुद्ध उपादान है, शुद्ध उपादान कारण मोक्ष है ना, कि मोक्ष भी पर्याय। मोक्ष कैसी पर्याय? कि पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम मोक्ष। मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यु संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ। और उस मोक्ष का, मोक्ष अगर पूर्ण शुद्धता है तो मोक्ष का कारण क्या होगा? अल्प शुद्धता। माने मोक्ष का कारण उस, माने उस मोक्ष का कारण तो माने मोक्ष हुआ कार्य, और मोक्ष कार्य का कारण तो तो मोक्ष हुआ पूर्ण शुद्ध, तो उसका कारण कैसा होना चाहिए? कि उसका कारण उसी की जाति का होगा, तो उसको मार्ग क्यों कहा? कि अभी उसमें पूर्णता नहीं है ना, तो पूर्णता नहीं है तो वो मार्ग कहलाएगा, और पूर्णता हो गई तो वो मोक्ष कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये, मोक्ष शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता की अभिव्यक्ति का नाम मोक्ष है। तो अशुद्धता कभी भी किसी को कहीं भी किसी भी अपेक्षा से मोक्ष का कारण नहीं हो सकती। रागादि भाव चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, किसी का भी रागादि भाव मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। समय सार कलश टीका में ये प्रश्न उठाया, ठीक है अज्ञानी का राग मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञानी में ज्ञानी का राग तो मोक्ष का कारण है कि नहीं है? कि भाई साहब मोक्ष का कारण तो ज्ञानी का राग भी नहीं है और अज्ञानी का राग भी नहीं है। अल्प शुद्धता, ज्ञानी को अल्प शुद्धता है कि वो अल्प शुद्धता की वृद्धि होकर के वो शुद्धता के अंश बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त होंगे। अगले पर्यायों के प्रवाह क्रम में शुद्धता बढ़ती जाए, बढ़ती बढ़ते बढ़ते पूर्ण शुद्धता का कारण होगी। तो पूर्ण शुद्धता वो है कार्य और अपूर्ण शुद्धता वो है कारण, समझ आ गया? तो मोक्ष का कारण कौन? के शुद्ध पारनामिक भाव विषयक भावना, ये मोक्ष का कारण है। रागादि भाव मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष कारण मतलब मोक्ष के कारण स्वरूप है, परंतु शुद्ध पारनामिक नहीं। अब दो बातें ली इसमें, कि रागादि भाव तो मोक्ष का कारण है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशुद्ध है। और गजब की बात कि पारनामिक भाव भी मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि यदि पारनामिक भाव मोक्ष का कारण हो तो आप और हम सभी पारनामिक भाव स्वरूप शुद्धात्मा वर्तमान में है कि नहीं है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस रागादि भाव तो सुनना कि रागादि भाव तो विरुद्ध है, मोक्ष के कारण से विरुद्ध है, तो मोक्ष के कारण से विरुद्ध भाव कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। और पारनामिक भाव मोक्ष का कारण क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष है एक समय की पर्याय, ठीक है? तो पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय का कारण द्रव्य नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? योग सार प्रावर्त है, अमित गति आचार्य का एक बहुत महान ग्रंथ है, वो भी पढ़ने जैसा ग्रंथ है, समय सार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। उसमें कहा पर्याय द्रव्य का दाता नहीं है, बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जिस समय औपशमिक क्षयोपशमिक छायिक भाव रूप पर्याय निर्मल निर्मल पर्याय होती है, तो उस निर्मल पर्याय का मुख द्रव्य स्वभाव की ओर होने से, पारनामिक भाव की ओर होने से बोला तो जाता है कि पारनामिक भाव मोक्ष का कारण है, लेकिन सच्चाई क्या है? कि पारनामिक भाव नहीं, किंतु पारनामिक भाव का आश्रय मोक्ष का कारण है। समझ आती कि नहीं आती बात? हाँ? और पारनामिक भाव का आश्रय माने क्या? कि पारनामिक भाव का आश्रय माने औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और छायिक भाव, क्योंकि ये पर्याय रूप भाव, पारनामिक भाव त्रिकाल है और पारनामिक भाव का आश्रय वो परिणाम है, परिणाम का कारण परिणाम है, मोक्ष परिणाम, उसका कारण मोक्ष मार्ग का परिणाम। और सुनो ध्यान से, क्या कि मोक्ष उत्पाद है, मोक्ष होना मोक्ष का उत्पाद रूप कारण माने तत्समय की योग्यता, और मोक्ष मार्ग माने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। मोक्ष मार्ग भी मोक्ष मोक्ष का व्यय रूप कारण है वास्तव में, कि जिसका व्यय करके मोक्ष मार्ग की पर्याय 14वें गुण स्थान के अंत तक मोक्ष मार्ग माना है, योग की शुद्धता जब तक नहीं हो जाए एक अपेक्षा से, ठीक है? तो उसका अभाव और अगले समय में उत्तर, उसके अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कौन सी आएगी? उत्तर क्षणवर्ती पर्याय आएगी मोक्ष, और मोक्ष मार्ग और मोक्ष जहां होता है वहां त्रिकाली द्रव्य होता है, तो उसको त्रिकाली उपादान कहते हैं, लेकिन त्रिकाली उपादान कभी भी कार्य का समर्थ कारण नहीं होता। समर्थ कारण इसलिए नहीं होता कि उसके होने पर कार्य, ये तो पक्का है कि वो नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कोई कहे कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग और मोक्ष हो जाए तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष हो जाए, त्रिकाली द्रव्य की आवश्यकता ही क्या है। तो त्रिकाली द्रव्य तो होगा वहां पे, लेकिन त्रिकाली द्रव्य वो मोक्ष का नियामक कारण नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिकाली तो अभी भी है, त्रिकाली तो निगोदिया को भी है। इसलिए होने से भी ज्यादा महत्व होने के स्वीकार का है। समझ में आएगी नहीं आई बात? परम पारनामिक भाव तो निगोदिया में भी है, फिर मोक्ष का कारण क्यों नहीं है वो? कि परम पारनामिक भाव यदि मोक्ष का कारण होता तो सारे मोक्ष में होते, यहां कोई होता ही नहीं। फिर तो गुरुदेव का उदाहरण याद आता है क्या, कि गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि महाराज आप जो उपदेश देते हो, हैं वो स्टार ऑफ इंडिया में किसी पुलिस ने पूछा था कि आप जो उपदेश देते हो कि अब सारे ही अगर आदमी मोक्ष चले जाएंगे तो यहां कौन रहेगा? मतलब सीधी सी बात, सभी मोक्ष चले जाएंगे तो आपका उपदेश सुनेगा कौन? फिर बाद में रहना, सुनने वाले भी तो चाहिए ना। हाँ, कौन से कौन कौन रहेगा यहां पर, फिर क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा कि जब तुमको ऐसा, जब तुमको लाखों रुपए की आमदनी होने वाली हो तो तुमको कभी ये विकल्प आता है कि सभी लखपति हो जाएंगे तो बर्तन मांजने वाला कौन रहेगा? एक गुरुदेव बोलते थे। मैंने गुरुदेव श्री के सच में एक बताता हूँ आपको प्रसंग, ऐसे इतने गजब के प्रसंग हैं, सुने भी हैं पढ़े भी हैं, और अभी आपको सूचित कर दूँ कि वो प्रसंगों को मैं लिपिबद्ध भी कर रहा हूँ और युग पुरुष की गौरव गाथा के नाम से लगभग 300-400 पेज तो लिखे जा चुके हैं, है ना। और बड़ी मेरे ख्याल से 1000-1200 पेज में वो गुरुदेव श्री का पूरा जीवन परिचय आने वाला है, आएगा। वो बहुत गजब, मैंने ऐसे महापुरुष कि आपको, अपने को लगता है क्या प्रसंग छोड़ दें इनमें से, अपन कोई छोड़ने जैसा प्रसंग लगता ही नहीं। क्यों? उनके हर प्रसंग से अपने को प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही थे, एक हमारे यहाँ मुमुक्षु थे और पंडित कैलाश चंद जी हमारे यहाँ आते थे, पवन जी के पिताजी, बहुत रहे हमारे यहाँ। हम लोग सच में गुरुदेव का परिचय हमें उन्हीं से हुआ, नहीं तो हम गुरुदेव को जानते नहीं थे उस एरिया में। और ऐसा परिचय कि गुरुदेव के अलावा झांकना मत किधर भी, अगर वर्तमान में तुझे भव समुद्र से तिरना है एकमात्र गुरुदेव आधार है। समझ आ गया ना? तो वो जब इस तरह की बातें करते थे कि ए तू ये बात मानेगा तो तेरे, उनकी शैली थी ये कि तेरे को तो मोक्ष हुआ ही होगा, तेरे बाप को भी मोक्ष होगा, ऐसा बोलते थे। तो हम उनसे पूछते थे, मैंने कहा साहब ये बात तो हमको समझ में नहीं आई, माने हम और मोक्ष हमारे पिताजी को भी हो, ये बात कैसे? वो कहते जब तुमको मोक्ष मार्ग में लगोगे तो उनको भी तो शर्म आएगी थोड़ी बहुत। तो ऐसा जब वो बोलते थे तो एक हमारे मुमुक्षु थे, वो कहते पंडित जी अगर सभी बातें, सभी आपकी बात मान ले, और अभी अभी तो हमने नया नया मंदिर बनाया, सन 82-83 की बात है, 82 में मंदिर बना, 83-84 में पंडित जी आ गए, कि साहब सभी ये बात मान लें और आपकी बात मान करके सभी मोक्ष चले जाएंगे तो इन भगवान की पक्षाल कौन करेगा? ये नया मंदिर बनाया इसको संभालेगा कौन? तो पंडित जी ने कहा कि तुम तो बचे हो संभालने के लिए, कि तुमको ये भाव आया ना, कौन करेगा? अरे इससे बड़ी भगवान के मंदिर बनाने की सफलता क्या कि भगवान का एक भी भक्त भगवान की पूजा करने के लिए ना बचे। है क्या बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा पूजा करने के लिए ना बचे कह रहा हूं मैं, पूजा कराने के लिए बन जाए, वो पूजा कराने वाला हो जाए, मैंने वो स्वयं भगवान बन जाए। इसमें भगवान के मार्ग की सफलता है या विफलता बताओ। एक एक एक, एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उस विद्यार्थी 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी उस टीचर की सफलता क्या है कि अगले साल उस कक्षा में एक भी विद्यार्थी नजर नहीं आना चाहिए, मतलब अगली कक्षा में सारे विद्यार्थी चले जाना चाहिए। अब गुरु जी कहे मैंने इतनी मुश्किल से तुमको पढ़ाया, तुम सब छोड़ के मुझे जा रहे हो, ठहरो ना यहीं। और भाई साहब अगर एक साल ठहर गए और दो साल ठहर गए तो विद्यार्थियों का तो जो होगा सो होगा, टीचर से कहते तेरी नौकरी बचेगी नहीं। तो अगर हम भगवान नहीं बने तो काय का तुम्हारा भगवान पना? अरे हम भगवान के मार्ग में चलें और भगवान नहीं बने तो इन भगवान का भगवान पना क्या? और अगर हम ये कहते हैं कि हम भगवान के अनुयायी हैं और हम मोक्ष मार्ग में नहीं चलें तो हमारा भगवान का अनुयायी पना क्या? विचार तो करो, भगवान का भगवान पना भी यह है कि उनके मार्ग की आराधना करने वाला उन जैसा बन जाए, और शिष्य का शिष्य पना भी यह है कि उस मार्ग का अनुसरण करने वाला शिष्य शिष्य ही नहीं बना रहे, वो भी भगवान बन जाए। तो ये यहां पे कह रहे हैं, देखो भाई, परंतु क्या कहते हैं, परंतु शुद्ध पारनामिक नहीं, क्योंकि शुद्ध पारनामिक तो त्रिकाल है ना, तो त्रिकाली जो है, त्रिकाली भी कैसा त्रिकाली, नहीं बदलने वाला त्रिकाली, जिसमें से शुद्धता का आना होता नहीं, कहा तो जाता है लेकिन ना तो जिसमें से शुद्धता आती है और ना जिसमें कुछ आता है और ना जिसमें कुछ जाता है, कुछ आवे जावे, शुद्ध पारनामिक भाव में कुछ आवे और शुद्ध पारनामिक भाव से कुछ जावे तो वो हलचल वाला हो गया, और हलचल वाला हो गया तो ध्रुव की ध्रुवता नहीं बची, समझ आ गया बस। और जरूरत क्या है पारनामिक भाव के, पारनामिक भाव ये कहता है, पर्याय पारनामिक भाव से कहे कि भाई साहब आप औदयिक भाव में नहीं पधारे कोई बात नहीं, क्योंकि आप पारनामिक भाव हो तो औदयिक भाव में नहीं पधारे कोई बात नहीं, उपसम भाव में नहीं पधारे वो भी आपके लिए शोभा की बात नहीं थी, उपसम भाव भी क्योंकि अल्प शुद्धता थी, क्षोभसम भाव में भी आप नहीं आए कोई बात नहीं क्योंकि वहां भी थोड़ी मलिनता थी, लेकिन छाइक जैसा पवित्र भाव प्रकट हुआ और आप उसमें भी नहीं पधारो तो ये बात तो अच्छी नहीं है। तो पारनामिक भाव मानो उत्तर देता, अलंकार है ये, कि मानो पारनामिक भाव उत्तर देता है कि तुझे शुद्धता से मतलब है, तुझे पवित्रता से मतलब है, या मेरे उसमें पधारने से मतलब है, बता दे। कि नहीं नहीं हमें तो शुद्धता से मतलब है, कि जब मेरा नाम लेने से तेरे को शुद्धता मिल जाती है तो मेरे को आने की बात क्यों करता है, नहीं? अपन किसी अपने से कोई आदमी कहे भाई साहब ये फलाने ऑफिसर आपके काम के हैं, आपके आपके जान पहचान वाले, और आप अगर बोल दो तो वो काम नहीं होवे, कानून तोड़ के भी काम करना पड़े तो करे, भले बाद में EDCD जो भी आती रहे बाद में देखा जाएगा वो, ठीक है, लेकिन एक बार तो वो काम कर देगा आपका, आप बोलो और काम नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही है, तो आप चलो हमारे साथ और आप उनसे बोलो, एक बात बता, तुझे तेरा काम होने से मतलब है कि मेरा चलने से मतलब है, काम होने से मतलब है ना, तो बस मेरा नाम ले देना वहां जाके कि उनने भेजा है और तेरे आगे पीछे वो नहीं घूमे तो फिर मेरे से बताना बात है। तो ऐसे ही कहते हैं कि पारनामिक, मैं पारनामिक भाव हूं, परनाम को कहते परनाम से आज पारनामिक भाव, मानो पारनामिक भाव परनाम से कह रहा हो कि एक बार तू मेरे आने का आग्रह छोड़ दे और एक बार मैं पारनामिक ऐसी धुन लगा और फिर तेरी शुद्धता का उत्पाद नहीं हो तो मेरे पास आना। कि जहां उस परनाम ने पारनामिक भाव की धुन लगाई, पारनामिक भाव रूप अपने को अनुभव किया, पारनामिक भाव की सन्मुखता की, पारनामिक भाव की ओर झुका, पारनामिक भाव ने कुछ दिया नहीं और पारनामिक भाव का उसमें कुछ न आया हो ऐसा कभी हुआ नहीं। जितनी शुद्धता द्रव्य स्वभाव में थी वो सारी शुद्धता पर्याय में प्रकट हो गई, और गजब की बात यह कि द्रव्य में से कुछ नहीं आया और द्रव्य का सब कुछ आ गया। सोचो केवल सन्मुखता की बात है, तो ऐसी सन्मुखता वाला भाव है ना भैया, वो पारनामिक भाव की सन्मुखता के वो मोक्ष का मार्ग है, और पारनामिक भाव की सन्मुखता वो परिणाम है। क्यों? क्योंकि पारनामिक भाव से विमुख पारनामिक भाव कभी हुआ ही नहीं, तो पारनामिक भाव के सन्मुख भी पारनामिक भाव को नहीं होना है। वर्तमान परिणाम पारनामिक भाव से विमुख हुआ उसका नाम औदयिक भाव पड़ा, तो जो विमुख हुआ वो सन्मुख होगा। तो विमुख कौन हुआ? पर्याय के द्रव्य, पर्याय विमुख हुई तो पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होती है, और द्रव्य स्वभाव के सन्मुख अभेद भाव से द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होती है, तो उस पर्याय का नाम औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायिक भाव होता है, और कहते हैं वही भाव मोक्ष का कारण होता है। बहुत दौड़ दो चार वाली बात है ना, ये यहां पर कह रहे हैं, देखो शुद्ध पारनामिक भाव नहीं, अर्थात शुद्ध पारनामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, ठीक है। जो शक्ति रूप मोक्ष है, अब देखो, अब बहुत बढ़िया बात, कि जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक है। क्या शक्ति रूप मोक्ष है ना, पांच प्रकार के मोक्ष होते हैं, नाम सुने, पांच प्रकार के मोक्ष अपने देखो, एक है शक्ति रूप मोक्ष, एक है दृष्टि मोक्ष, एक है मोह मुक्त मोक्ष, एक है जीवन मुक्त मोक्ष और एक है देह मुक्त मोक्ष। क्या कहा, आ गया, शक्ति रूप मोक्ष, परम पारनामिक भाव, त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव का अवलंबन लेकर मिथ्यात्व का नाश होकर के सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसे कहते हैं दृष्टि मोक्ष। और वो दृष्टि मोक्ष पंचम काल में भी होता है। कौन कहता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, दृष्टि मोक्ष होता है, ठीक है। मोह मुक्त मोक्ष बारहवा गुणस्थान, जीवन मुक्त मोक्ष तेरहवा गुणस्थान, अब नया जन्म नहीं होगा, केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण होगा, जन्म नहीं होगा, सिद्ध दशा में की प्राप्ति होगी। और देह मुक्त मोक्ष, मैं अब अनंत काल के लिए कभी देह नहीं मिलेगी। तो शक्ति रूप मोक्ष, तो यहां कहते हैं जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक है, बराबर। और कैसा है कि वह तो प्रथम से ही विद्यमान है। क्या मतलब, कि जिस समय तुम निगोद में था उस समय भी शक्ति रूप मोक्ष तो विद्यमान था। अरे जिसके लिए नियम सार के 71 नंबर के कलश में आचार्य देव ने कहा, जिन सुबुद्धियों को कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। आचार्य को मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहले से विद्यमान शुद्धता उनको दिखती है, ठीक है, उनमें कोई भेद देखने वाला नए आचार्य कहते हैं हमारे पास नहीं है। और अज्ञानी सलाह देता है कि महाराज व्यवहार नहीं से देख लो ना, क्या कैसे देख लो, कि व्यवहार नहीं से देख लो, कि व्यवहार नहीं से देखें तो भी हमें मोक्ष और संसार में कोई अंतर नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि मोक्ष भी एक समय की पर्याय है और संसार भी एक समय की पर्याय है और आश्रय दोनों का नहीं लिया जाता, वो दोनों पर्याय है। जब उनका पर्यायपना हमें दिखता है, जब उनका पर्यायपना दिखता है तो फिर चाहे मोक्ष की पर्याय हो और चाहे संसार की पर्याय हो, चाहे औदिक भाव की पर्याय हो और चाहे क्षयिक भाव की पर्याय हो, पर्याय होने से वो अवलंबन लेने योग्य नहीं, इसलिए व्यवहार नहीं से भी हमें उनमें कोई अंतर नजर नहीं आता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे के एक कलश में खुद ही लिखा, बंद हो के मुक्ति हो कुछ नहीं, परम पारनामी भाव को जहां सामने रखते हैं तो कहते हैं बंद और मोक्ष को हम एक खाते में डालते हैं, किसमें, पर्याय के खाते में। आश्रय लेने लायक नहीं है ना, आश्रय लेने लायक नहीं, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं, आश्रय की अपेक्षा ही, समझ लेना, संसार मोक्ष की अपेक्षा जो अंतर है, पर्याय की शुद्धता अपेक्षा अशुद्धता का अंतर है, एक हेय रूप भाव है, एक प्रकट करने योग्य उपादेय रूप भाव है, ये अंतर है, लेकिन आश्रय करने की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है, बराबर है। शुद्धता पहले से विद्यमान है, उनमें कुछ भी भेद में किस नए से देखूं, ये आया, ये यहां पे कहा कि जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारनामिक है, प्रथम से ही विद्यमान है। यह तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है, मैंने प्रकट होने वाले मोक्ष का विचार चल रहा है कि प्रकट होने वाले मोक्ष का कारण कौन है। शक्ति रूप मोक्ष की हम बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति रूप मोक्ष तो पहले से ही विद्यमान है, निगोदिया के पास भी शक्ति रूप मोक्ष विद्यमान है, प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है, यह तो कार्य परमात्मा की बात चल रही है, शक्ति रूप मोक्ष की बात नहीं चल रही है। उसी प्रकार सिद्धांत में कहा है कि, क्या कहा है, इसी प्रकार सिद्धांत में कहा है कि निष्क्रिय पारनामिक। और मैंने आपको शुरू के दिन जब स्वाध्याय शुरू किया था अपन ने, तभी कहा था कि ये जब पहली बार गुरुदेव श्री का प्रवचन इस ग्रंथ पर हुआ था, इस 320 नंबर की गाथा पर प्रथम बार राजकोट में गुरुदेव श्री का प्रवचन हुआ, राजकोट में, और राजकोट में जब भी गुरुदेव श्री का प्रवचन हुआ उस समय तक निष्क्रिय पारनामिक ये शब्द किस ग्रंथ में आया है ये उस समय तक पता नहीं पड़ा था। तो बाद के प्रवचनों में फिर गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया कि पहले यह पता नहीं था कि किस ग्रंथ का शब्द है, क्योंकि सिद्धांत में कहा है। तो मैंने किसी किसी शास्त्र का वाक्य है जिसको जयसेनाचार्य ने उद्धृत किया, तो बाद में पता लगा पंचाशती काय की 56 नंबर की गाथा की जयसेनाचार्य देव की टीका में 5 भावों का कथन किया, वहां पर ये पारनामिक भाव के लिए निष्क्रिय पारनामिक। अब निष्क्रिय का मतलब अपन तो क्या समझते हैं भाई साहब, आजकल हम तो निष्क्रिय हैं। क्यों निष्क्रिय हैं? कोई पूछता ही नहीं है, हम बोलते हैं कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, तो उस वो ऐसी निष्क्रियता नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अभी मानने लगेगा, पूछने लगेगा, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो वापस वही उछाले मारेगा। तो उदासीनता, निष्क्रियता, निष्क्रिय माने जिसमें क्रिया नहीं है, निष्क्रिय माने जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, जिसमें कोई हलन चलन नहीं होता, वो पारनामिक भाव कहते हैं, निष्क्रिय है। तो फिर यहां पे कहा शुद्ध पारनामिक है, अर्थात शुद्ध पारनामिक भाव निष्क्रिय है। तो फिर आचार्य से प्रश्न किया कि साहब निष्क्रिय का क्या अर्थ है, माने आप निष्क्रिय कह के क्या कहना चाहते हो? हमारे यहां तो निष्क्रिय को उसे बोलते हैं ठलुआ आदमी है, कोई काम धाम तो है नहीं इसके पास, तो ऐसा है क्या ये? अरे वो पारनामिक भाव निष्क्रिय है, लेकिन निष्क्रिय होने पर भी कमाल देखो उसका, कि खुद किसी क्रिया को करता नहीं और खुद किसी क्रिया में जाता नहीं, लेकिन जो उस निष्क्रिय का दर्शन कर लेता है उसकी क्रिया में सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। वो कुछ देता नहीं और उसका दर्शन करने से, उसकी सन्मुखता करने से उपलब्धि हुए बिना रहती नहीं, कैसा निष्क्रिय है ये। तो देखो निष्क्रिय का क्या अर्थ है कि शुद्ध पारनामिक भाव बंध के कारणभूत जो क्रिया, बंध के कारणभूत जो क्रिया माने रागादि परिणति, उस रूप नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा, और मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया अर्थात शुद्ध भावना परिणति, देखो इसमें यह भी स्पष्ट आ गया कि रागादि भाव बंध के कारणभूत क्रिया है, उनसे रंच मात्र भी मोक्ष की क्रिया नहीं होगी। और मोक्ष के कारणभूत क्रिया कौन? कि शुद्ध भावना परिणति, वह मोक्ष के कारणभूत क्रिया है। शुद्ध भावना परिणति से रंच मात्र भी बंद होने वाला नहीं है, उस रूप भी नहीं है, इसलिए ऐसा जाना जाता है कि शुद्ध पारनामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान तो पर्याय है, तो किस लिए? क्योंकि ध्यान विनश्वर है, और शुद्ध पारनामिक भाव तो अविनाशी है। क्या कहा कि ध्यान रूप क्यों है और ध्येय रूप क्यों नहीं है? कि ध्यान पर्याय है, वो विनश्वर है, पहले ध्यान नहीं था, अभी ध्यान हुआ, और अभी ध्यान है, जब मोक्ष प्रकट हो जाएगा तो ये ध्यान की दशा नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो ये तो विनश्वर है, लेकिन जिस समय पारनामिक भाव की भावना रूप ध्यान नहीं था, उस समय भी पारनामिक भाव था। जिस समय पारनामिक भाव की भावना रूप ध्यान है, उस समय भी पारनामिक भाव है, और जिस समय ध्यान पर्याय का नाश होकर मोक्ष की दशा प्रकट हो जाएगी, उस समय भी पारनामिक भाव है। और जैसा मोक्ष के समय पारनामिक भाव है, वैसा ही पारनामिक भाव की ध्यान रूप अवस्था के समय था, और वैसा ही पारनामिक भाव से विमुख वर्तती मिथ्यात्वादि की पर्याय के समय था। यानी निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक अगर नहीं बदलने वाली कोई चीज है तो वो पारनामिक भाव है, और जो नहीं बदलता वो होता है ध्येय, और जो बदला ध्येय के लक्ष्य से, जिसमें परिवर्तन होता है, पारनामिक भाव का आश्रय लिया, आश्रय बढ़ा, आश्रय की पूर्णता हुई, ये हुआ ना, आश्रय लिया, आश्रय में वृद्धि हुई, आश्रय की पूर्णता हुई, आश्रय लिया संवर निर्जरा, आश्रय लिया संवर, आश्रय की वृद्धि हुई निर्जरा, आश्रय की पूर्णता हुई मोक्ष। ठीक है, ये पर्याय है और ये भी नश्वर है। और पारनामिक भाव कैसा है कि पारनामिक भाव तो अविनश्वर है। और अविनश्वर पारनामिक भाव की ये बात सुनकर अपने को कैसा आनंद आना चाहिए, गजब की बात है ना। कि अरे निगोद में एक श्वास के बार, एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने की बात हमने सुनी है, शास्त्र में पढ़ी है, और आज तक हम जिस बात को सत्य मानते आए उस बात में तो कुछ दम ही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आप कहते हो एक बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरा, और आचार्य हम कहते हैं कि भाई साहब अगर वो एक बार भी मर गया होता तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आता? नक्की तो करो पहले कि दूसरी बार फिर मरने के लिए आया, इसका मतलब पहली बार मरा नहीं था। तीसरी बार फिर मरने के लिए आया, लेकिन इसका मतलब दूसरी बार मरा नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मर ही गया होता तो फिर मरने के लिए दोबारा कहां से आता? तो दौलत राम जी ने गलत लिखा? गलत नहीं लिखा, उन्होंने शरीर के संयोग और वियोग का ज्ञान कराया। आत्मा के अजर अमर तत्व की बात को भूल गए हैं वे, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मा अजर अमर तत्व होने पर भी एक श्वास में 18 बार शरीर के संयोग और वियोग की, जन्म और मरण की परिस्थिति से उसे गुजरना पड़ा। शरीर का संयोग वियोग हुआ, शरीर के संयोग वियोग की अपेक्षा से आत्मा के जन्म मरण का व्यवहार भी हुआ। लेकिन गजब की बात ये, अनादि काल से ये आत्मा मरा नहीं और अनंत काल तक ये आत्मा कभी मरेगा नहीं। ऐसा शुद्ध पारनामिक भाव वो ध्येय रूप है, वो ध्यान रूप नहीं है। और इसमें फिर आचार्य देव ने योगिंदु देव आचार्य देव का एक उद्धरण दिया है, और वो योगिंदु देव आचार्य देव का उद्धरण हम पढ़ेंगे, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। कल श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्मदिन भी है, जन्म जयंती का दिन भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और गजब की बात यह है, समय सार के गुजराती प्रकाशन का 80वां वार्षिक, 83 वार्षिक दिन है। वास्तव में समझ लो कि भरत क्षेत्र में समय सार युग का प्रवर्तन यानी समय सार का प्रकाशन, ये हमारे लिए मुमुक्षुओं के लिए बहुत धन्य दिन है, बहुत धन्य अवसर है, और बहुत ही अपूर्व उल्लास और भक्ति के साथ हम इसको मनाना चाहिए। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।
सहजानंदी शोधस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोधस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजा नंदी शोधस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोधस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोधस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। आशादि सिद्ध दशाएं प्राप्त लोकागरी विराजमान वर्तमान 24 रुष्पादी महावीपरण 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। हाल विदेश क्षेत्र में विद्यमान समोसम शोभायमान दिव्य धन्यना दाता धर्मधोरंदर सिमंदरादि अजित वेरी पर्यंत विश्वविराजमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। वर्तमान अवसर पीने समय ध्रुवधामनी दक्षिण ध्वनि दखावनार अखंड साधना प्रत्येक से बाहुबली मनीन्द्र भगवान नो जय हो। दिव्य धन्य सारभूत नित्य बोधक परमागम समय सार प्रवचन सार आदि समस्त जिनवाणी महात्नो जय हो। सदैव विदेहनो प्रवास करी भरत क्षेत्रना भव्य भक्तों ने तथा आम बालकों ने जिनवाणी मातना भेटना करानार कलिका स्वग्न भगवान श्री कुनकुंद आचार्य देवी आदि आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवंतोनो जय हो। लाखों करोड़ भक्तों तारणहार अम भक्तों ने मोहन निदामा से जगाड़नार अनंत अनंत उपारी प्रातस्मणि श्री कहन गुरु देवनो जय हो। स्वानुभूति मार्ग प्रकाशक प्रसन्नमूर्ति धन्यवतार पूज्य भगवती महातनो जय हो। मुनि दशाना पूर्व सुनी भावना जागृत करानार परम कृपाल देव आदि समस्त ज्ञानी धर्मात्मा संतोनो जय हो। शाश्वत पर्व अष्टानिका पर्वनो जय हो। श्री परम वितराक सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो द्वादश अंग में परम वितरक शुद्धदाता नित्य बोधक जिनवाणी मातनो जय हो। रात्रि नो कार्यक्रम यथावत रहे दरेक लाभ लेवा विनंती है।